फिर इसके बाद आप देखिए कि इस सूरत की चंद खसूसियात नोट कर लीजिए। नंबर एक, सूरत अलानाम में मुशरिकीन ने मक्का के ख़िलाफ़ हतमी फर्दे जुर्म है, ये भी नोट करें। फाइनल चार्जशीट, एक होता है ना किसी को वार्निंग्स देते हैं, आज दी, कल दी, अगले दिन दी, लेकिन फिर एक दिन आप आखिरी वार्निंग देते हैं, इट्स लास्ट चांस, ठीक है। और इनके शिर्क की मुख्तलिफ सूरतों का बयान है और तौहीद की मुख्तलिफ किस्मों की वजाहत भी है। इस सूरत में मुशरिकीन ने मक्का के एतराज़ात भी नकल किए गए और उनका मस्कत जवाब भी दिया गया और इन्हें इजमाली तौर पर हलाकत की धमकी भी दी गई। आप कह सकते हैं कि इस सूरत में शिद्दत पाई जाती है, क्योंकि ज़रा एक हद होती है ना सब्र की और बर्दाश्त की। दूसरी बात है किताबी तरतीब के लिहाज से सूरत फातिहा के बाद चार मदनी सूरतें आपने मैंने पढ़ी, दोहरा लें। आप में से किस किस को सूरतों की तरतीब याद है पूरी कुरान की, तो फिर याद कीजिए, आपके इसी सफ़र के दौरान आपको याद हो जानी चाहिए। इसमें नशीद भी हैं, अगर आप वो सुन के याद करना है बच्चों की तरह तो वैसे कर लें, वैसे मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये सफ़र नज़्म जली का इस दौरान आपको याद हो जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, दौरे कुरान एक ऐसी दौलत है जिसने मुझे सूरतों के नाम और तरतीब याद करा दिए। तीसवां पारा जब याद किया तो सूरत याद थी, तरतीब भूल जाती थी। और स्पेशली मैंने जब पहले किया ना तो पीछे से किया था सूरत बिल्कुल होला से, अक्सर टीचर वहीं से कराते हैं। अगर मुझे कोई मौका दे हिफ्ज कराने का तो मैं सूरत नबा से कराऊँ, क्योंकि सूरतों की तरतीब भूल जाती। हाफिज़ को हमेशा अगली सूरत पिछली के बाद याद आती है ना, इसके बाद अगली, जब आप उलट करते हैं ना, अभी भी मुझे पीछे से ही समझ आ जाती है, इधर से भूल जाती हूँ तरतीब, ठीक है। तो ये एक झोल होता है, लेकिन ये है कि चार मदनी सूरतें पढ़ी। बकरा, बोलिए सब मिलके बोले, आले इमरान, निसार, माईदा, ठीक है। उन चार मदनी सूरतों में ज़्यादा तذکرہ किसका था? यहूद और नसारा। और यहूद और नसारा के मजमुए को क्या कहते हैं आप? बनी इसराइली। लेकिन इस सूरत में, ये मक्की सूरत है, इसमें फ़र्द जुर्म बनी इस्माइल यानी मक्का के लोगों की है, ठीक है। अहले किताब को दावत इस्लाम और इनके और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान रवाबित से मुतल्लिक थी। इस सूरत में क्या है, सूरत अनाम से कुरान मजीद का मिजाज बिल्कुल बदल जाता है। इसका रुख बनी इस्माइल बिलखसूस कुरैश मक्का की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ से दो मक्की सूरतों का आगाज़ हो रहा है और पढ़ने वाले को एक नए पिराए बयान से हमकिनार होना पड़ता है। मतलब क्या है कि जब कोई ये पढ़ता है ना तो यहाँ से मिजाज बदल जाता है। मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे खानों का टेस्ट होता है ना, इस तरह सूरतों का भी टेस्ट है। मक्की सूरत बिल्कुल और मूड से पढ़ी जाती है, मदनी सूरतें बिल्कुल और मिजाज की हैं। तो आपको पिछली सूरतों में, जैसे ख़ास तौर पे पीछे हमने सूरह मायदा की, थोड़ी बोझल सूरत थी, उसके अंदर अहकाम ज़रा मुश्किल किस्म के थे, लेकिन इधर इस सूरत को पढ़ते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा महसूस होगा कि हकीकी ज़िंदगी के करीब बातें हैं, ठीक है। फिर इसका थोड़ा सा पिछली सूरतों के साथ किताबी रब्त भी देख लेते हैं। सूरत मायदा में यहूद व नसारा के सेकुलरिज्म और शिर्क फित तशरी का जिक्र था, ऐसे ही है ना, यानी जो उन्होंने तब्दीलियां कर दी, चेंजेस की। यहाँ सूरत अलानाम में दीगर चीज़ों के अलावा मुशरिकीने मक्का के शिर्क फित तशरी की वजाहत है, यानी वही बात, वहाँ यहूद और नसारा की तब्दीलियां और यहाँ मक्का वालों की तब्दीलियां। सूरत अलानाम की आयत 6 में कौमों की हलाकत का इजमाली जिक्र है। इजमाली क्या होता है, ऐसे ही मोटा सा। अगली सूरत अल अराफ में तफसीली तौर पर 6 कौमों की हलाकत का जिक्र करके कुरैश मक्का को आखिरी वार्निंग दी गई और अल्लाह का कानून हलाकत अकवाम और कानून इस्तबदाल अकवाम बयान किया गया, ठीक है। क्या पता चला पिछली सूरत मायदा से क्या रब्त है, कि उसमें यहूद और नसारा की तरमीमात है, और इससे अगली सूरत अराफ में क्या है, कौमों के ऊपर जो अजाब आए थे, उधर तफसील है, इधर इजमाल है, ठीक है। फिर सूरत के कुछ मुश्किल अल्फाज, यानी जो अहम, कलीद कहते हैं चाबी को, कलीदी अल्फाज कहें कि जिसको समझ जाएँ तो सूरत समझ आ जाती है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, अगर आप तरतीब से आप देखते जाएंगे तो सूरत अलानाम में इस बात तौहीद, इस बात क्या है, साबित होना, यानी सूरत अलानाम में तौहीद का साबित होना और गैरुल्लाह की तहकीर के लिए ख़ास सवालिया सलूक, यानी सूरत अलानाम में सवालिया अंदाज में तौहीद को साबित किया गया और गैर अल्लाह की तहकीर की गई है, क्वेश्चनिंग है, ठीक है। सूरत अलानाम में अल्लाह के मुकाबले में गैर अल्लाह की तहकीर और मुशरिकीन से मुजादले के लिए खुद कलामी और बहस पर मबनी कई सवालिया असालीब इस्तेमाल किए गए हैं। مثلا اب اس کے دلائل دیکھیے 164 آیت میں غیر اللہ کی ربوبیت کی تردید کے لیے یعنی اس کو رد کرنے کے لیے کل اغیر اللہ ہی ابغی ربا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا تلاش کروں کسی کو رب، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور رب بنا لوں. تو یہ سوال ہے نا، اوپر جو بات ہوئی ہے نا سوالیہ انداز ہے، تو یہ کوشچن کیا ہوتا ہے اگلے کے دماغ میں تحریک پیدا کرتا ہے. پھر آیت 40 میں غیر اللہ کی عبادت اور شرک فی دعا کی تردید کے لیے جو سوال آیا ہے وہ کیا، آ غیر اللہ ہی تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو تم پکارتے ہو. پھر آیت 14 میں اللہ کو ولی اور کارساز بنا کر غیر اللہ کی ولایت کی تردید کے لیے کل اغیر اللہ ہی اتخذ ولی، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور ولی بنا لوں، کوئی اور دوست بنا لوں. ٹھیک ہے. پھر آیت 71 میں غیر اللہ کے اختیارات کی تردید کے لیے کل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، سب کے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوشچن مارک لگا ہوا ہے، کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ ہمیں نفع دیں اور نہ ہمیں ضرر دیں. اور اسی طرح آیت 114 میں غیر اللہ کی حاکمیت اور شرک فی التشریع کی تردید کے لیے اف غیر اللہ ہی ابتغی حکما، کیا پس سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی حکم. تو آپ دیکھیں یہ پانچ چھ مثالیں کیا بتاتی ہیں کہ یہ سورت شعور کو بیدار کرتی ہے. آج بھی یہ انداز بہت پسند کیا جاتا ہے ٹیچنگ میں، سوال اٹھانا اور سننے والے سے کو یہ کہنا کہ وہ اس کا جواب ڈھونڈے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے دوسری جو بنیادی چیز سورت الانعام میں لفظ یعدلون کی معنویت، مشرقین سے مجادلے کے لیے یعدلون کا لفظ دو مرتبہ آیت نمبر 1 میں اور 150 میں استعمال کیا گیا، جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر اور ہمسر ٹھہراتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا جب شروع میں میں نے قرآن میں یہ لفظ پڑھا نا یعدلون، تو میں کہتی تھی عدل تو بڑا اچھا لفظ ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے نا ترجمے میں تو یعدلون سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ عدل کرتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ عدل کیا ہے، عدلہ کہتے ہیں ترازو کا ایک باٹ، اس میں کچھ رکھیں تو جب تک دوسرے میں اتنا ہی نہ رکھیں ترازو سیدھا نہیں ہوگا نا، تو یہ شرک ہے. یعنی اللہ کو ایک بلو میں رکھ کر کیا تم کسی دوسرے کو رکھ سکتے ہو. تو یہ یعدلون کا لفظ دو دفعہ استعمال ہوا ہے، جب کبھی پڑھیں تو اس پہ غور کیجئے گا. تیسری بات ہے سورت الانعام میں شرک فی الذات کی تردید کے لیے ایک عقلی دلیل ہے. شرک فی الذات کی تردید کے لیے مشرقین کے سامنے ایک عقلی دلیل رکھی گئی کہ جب اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں تو پھر اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. انا یکون لہو ولدن ولم تکن لہو صاحبہ، آیت 101 میں ہے. کیا پتہ چلا، شرک فی الذات. آپ کو سمجھ آیا کہ ذات کا شرک ہے اللہ کے بیٹے بیٹیاں بیویاں اور اس طرح کے خونی رشتے بنانا. تو یہ گویا کہ سورت الانعام کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ اس میں شرک کی مختلف قسموں کا ذکر ہے. ابھی تک آپ نے دیکھی ہے نا مختلف قسمیں، کہیں تشریح کا شرک ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اللہ کے لیے لفظ یعدلون استعمال جو کرتے ہیں لوگ اس کی بات ہے، پھر صرف شرک فی الذات ہے. سورت الانعام میں توحید علم کی وضاحت، یہ توحید علم کیا ہے بھائی، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. توحید علم کیا ہے، اللہ والا علم دوسروں میں ڈھونڈنا شرک ہو جائے گا. توحید علم کیا ہے کہ جو بات اللہ کے علم ہے وہ کسی اور کے نہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ غیب کا علم، آنے والے وقت کا علم، دلوں کے بھید، گھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، جہاں ہمارا رابطہ نہیں وہاں کیا ہے، کوئی پیر فقیر بابا بزرگ نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. بات سمجھ گئے. تو سورۃ الانعام میں یہ بات آیت 59 اور 101 میں لکھی ہوئی ہے. کیا توحید علم کی وضاحت کے لیے بتایا گیا کہ اللہ غیب کی چابیوں کا مالک ہے اور اس کا علم ہر شے پر محیط ہے، آیت 80، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. تو دل کو یقین سے باندھ لیجئے کہ اللہ جو علم رکھتا ہے وہ دوسرا کوئی نہیں رکھتا. آج کتنا شرک ہے صرف اس بات پہ، ہم جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے. آج کل آپ کو تک کہ کئی یعنی ایسے شوز کے ذریعے سے بھی یہ چیزیں پیش کریں، آپ کوئی بات سوچیں پھر اس کو پرچی پہ لکھیں پھر اس کو پیچھے رکھ دیں اور بعد میں بتاتے ہیں تو وہ وہی بات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کوئی ایسا ٹرک، یعنی کسی کو بلائیں گے کہیں گے آپ یہاں کچھ بھی لفظ سوچیں سوچیں، پھر آپ کو کہتے ہیں آپ اس کو پیپر پہ لکھیں، لکھ کے چھپا دیں، بعد میں بتاتے ہیں آپ نے یہ سنا ہے، اور 90% وہ وہی ہوتا ہے. جی جی ایسے ایسے بہت، اور وہ سب میں آپ کا مائنڈ ٹریپ کرتے ہیں. आपको चार चीज़ें दिखाएंगे, कहेंगे आप इसमें से किसी एक पे क्लिक लगाएं, और आप क्लिक लगा कर उसको छुपा देंगे, वो आपको बताएंगे आपने किस पे क्लिक लगाया। ये आप देखिए ना, बातिल उलूम में से ये लूम है, हमारा ईमान क्या है? कोई करके भी दिखा दे तो भी गैब का इल्म उसको नहीं पता। ये हमारा एक अकीदे का इम्तिहान होता है। हम कुछ सोचें और अगला भी कहते हैं, कहते हैं आपको कैसे पता लगा या आपको किसने बताया? नहीं, तौहीद इल्म क्या है, अल्लाह ही जानता है। अगर कोई हमारे तुक्का तीर लग भी जाता है ना, तो फिर भी इसका ये नहीं मतलब कि अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा हमारा इल्म जानता है। ठीक है, फिर इसी तरह से सूरत अल-अनाम में तौहीद तंजीहा की वजाहत। अब ये क्या होती है भाई तंजीहा? यानी आप देखें तौहीद की ऐसी किस्में जिनके नाम भी नहीं आपको याद होंगे। देखिए तंजीह क्या होता है, वो काम जो दूसरा ना कर सके। अल्लाह सुबहाना ताला की कुछ ऐसी खूबियां और सिफात हैं जो अल्लाह के सिवा किसी में नहीं। मसलन आयत 14 में क्या है, वहुवा युतैमु वला युतम, वो खिलाता है, खिलाया नहीं जाता। अरब लोग अपने बुतों के आगे खाने रखते थे और उनको कहते थे खाओ, तो उसका रद्द है कि तुम कहते हो ये खाते हैं, अल्लाह तो खिलाता है। इसी तरह आप देखिए हमीदा, तो ईद तंजीह की वजाहत के लिए हम्द और तस्बीह के फ़र्क को बयान किया जा रहा है। अल्लाह के लिए हर चीज़ तस्बीह कर रही है, सब्बह लिल्लाही या युसब्बिहु। ठीक है, अब आप किसी और के लिए तस्बीह नहीं कर सकते, लेकिन समटाइम तहम जो तारीफ़ के मानों में वो अल्लाह की होती है, दूसरों की भी होती है। तो इस सारी तौहीद में ये समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें ख़ास अल्लाह के लिए हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। फिर इसी तरह सूरत अल-अनाम में तौहीद इख्तियार की वजाहत। ये तौहीद कितनी किस्में होती हैं, हाँ? तौहीद इख्तियार क्या है? इसमें तीन बातें हैं। नंबर एक, अल्लाह ताला कौमों की हलाकत का इख्तियार रखता है। बड़ी से बड़ी कौम, गिरोह, मुल्क को अल्लाह एक इशारे से तबाह कर सकता है। कैसे? अवलम यरव कम अहलकना मिन कबलिहिम, तो क्या वो नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने माजी की कितनी कौमों को हलाक कर दिया? कभी इस पे गौर करें ना, बंदे का दिल बंद हो जाता है। आज तक कितनी कौमें हलाक हुई, आज के दौर में ज़रा कोई चूँ चाँ करे अल्लाह उसको हलाक कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये अल्लाह ताला का इख्तियार है। तौहीद इख्तियार की क्या चीज़ है, जिसको जब चाहे हलाक कर दे। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने जालिम कौमों को जड़ से उखाड़ फेंका, फकुती दाबिरुल कौमिल्लज़ीना ज़लमू, आयत 45 में, बस काट दी जड़ उस कौम की जिन्होंने जुल्म किया। और आयत 47, क्या तुम लोग गौर नहीं करते कि अल्लाह का अजाब अचानक भी नाजिल हो सकता है? कुल अरअयतकुम इन अताकुम अजाबुल्लाहि बग्ततन औ जहरा, क्या नहीं देखा तुमने कि अगर आ जाए अल्लाह का अजाब अचानक या फिर खुला हुआ ज़ाहरन खुल के आ जाए। मसलन आप देखिए कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीक़ों से अजाब दे सकते हैं। मसलन ऊपर से यानी बारिश, बिजली वगैरह का गिरना, नीचे से यानी सैलाब, ज़लज़ला, खसफ। इसी तरह कौमों को मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम करके एक दूसरे को अजाब में मुबतला कर दे। आयत 65 में आता है, कुल हुवल क़ादिरु अला यबअस अलैकुम अजाबम मिन फौकिकुम औ मिन तख्ति अरजुलिकुम औ यलबिसकुम शियाम व युज़ीक़ बअदकुम बअसा बअद, कह दीजिए कि वो कादिर है इस बात पे कि भेजे तुम पर अजाब तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से, या तुमको मिला दे गिरोहों में यानी तुम्हें गिरोह गिरोह कर दे, या फिर चखाए तुम में से बाज को लड़ाई बाज की यानी जंगों की, जो एक भरमार लग जाए। ये अल्लाह ताला कर सकता है। सच बताइए अल्लाह के इख्तियार में है कि नहीं ये सब कुछ? आज भी ये सब कुछ हो सकता है। कल एक वीडियो देखी जिसमें ड्रोन कैमरे के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के करीब पहाड़ों के अंदर से जो लावा निकल रहा है ना, उसकी वीडियो बनाई हुई थी। और मैं देखते हुए ये सोच रही थी कि इसको देखने के बाद फिर कोई नहीं कह सकता कि जहन्नम नहीं है। उसको कहा ये गया है कि जिसको अपनी ज़बान में आप कह लें कि मेन डोर ऑफ हेल, उसके अंदर से ऐसे आग का दरिया बह रहा है जैसे पानी का दरिया बहता है, और वहाँ इतनी करीब तो कोई जा नहीं सकता। ड्रोन कैमरे के साथ उन्होंने उसकी तस्वीरें खींची हुई हैं, पूरी वीडियो बनी हुई है, और जो बना रहा है वो शख्स ऐसे इतनी करीब उसके किनारे पहाड़ों के अंदर से करीब से जाता हुआ दिखता है कि यहाँ बैठकर देखते हुए दिल हौलने लग जाता है कि ज़रा से इसका पाँव गिरे तो ये अंदर चला जाए। तो इतना कुछ दुनिया में दिखाने वाली ज़ात क्या इस पे कादिर नहीं है कि आखरत को आज दुनिया में सामने ले आए? ज़रूरत इस बात की कि हम इसका यकीन रखें। अल्लाह के वादों का और अल्लाह ताला के इख्तियार को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़्यादा समझ आएगा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ये सारे मामले करता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि दुनिया में हर वक्त तब्दीलियाँ आ रही है ना, ये कौम उभर रही है तो ये बिखर रही है, तो ये जा रही है तो वो आ रही है, क्या अल्लाह ताला बाकी काम नहीं करा सकता? ज़रूरत है इस बात की कि आप और मैं इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करें और अपना अपना मुहासबा करें। ये देखें इस तरह, देखें अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। आप देखिए कि यकीन नहीं आता, और ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के करीब जगह है, वहाँ है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या अल्लाह ताला इसको आबादियों में नहीं ला सकता, और पीछे जो अरबी का लेक्चर चल रहा है उसमें वो यही कह रहे हैं कि जो कुरान पाक में आता है ना कि ऐ मालिक हमें अपने रब से कहो कि हमें आज यहाँ से निजात दे दे, तो कितने लोग होंगे औरतें और मर्द जो जहन्नुम में खड़े कह रहे होंगे कि हमें आग ने खा लिया। हमारा ईमान है ना कि ये है, इसको देखकर फिर कोई कह सकता है कि कैसे होगा जहन्नुम में? और जब इधर है तो क्या अल्लाह के पास इख्तियार नहीं है कि वो ऊपर या नीचे से डाल दे, ज़रा सा ये लावा फटे और ये आबादियों में आ जाए? और आते हैं, इटली का शहर जो था पोम्पियाई वो इसी लावे के साथ तबाह हो गया था। और ये अल्लाह का कितना करम है कि इतने करीब हमारे अजाब है लेकिन अल्लाह ताला हमें फिर भी मौके देता है। तो इसको समझिए कि अल्लाह ताला सलबे समात, सलबे बसारत और मोहरे कलूब का इख्तियार रखता है। यानी अल्लाह की तौहीद इख्तियार क्या है कि अल्लाह का इख्तियार है कि हमारी समात सल्ब कर दे। कई लोगों को बुढ़ापे में फिर सुनने का प्रॉब्लम हो जाता है ना, किधर गया वो दूर से भी बात सुन लेना। हमारे अपने बड़े जब बुज़ुर्ग होते हैं तो चार दफ़ा बात कहें तो उनको समझ आती है ना, कान में बात करें तो फिर समझ आती है, वरना वो उलट पुलट सोचते हैं। ये अल्लाह ने उनकी सल्ब की है ना। बसारत, बैठे बैठे आंखें चली जाएं और दिलों पे मोहर लग जाएं। किसी गैरुल्लाह के पास ये ताकत नहीं कि वो लौटा सकें। आ रही तुम्हें ना खजल्ला खुसम अकुम व बसार अकुम व ख़त्म आला खुलू बिकुम मन इलाखुन गैरुल्लाह या थी कुम भी। कह दीजिए अगर ले जाए अल्लाह तुम्हारी समात और बसारत और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, कौन सा इलाह है उसके सिवा जो ये चीज़ें ले आए तुम्हारे पास? आयत 46 है। तो कभी अल्लाह ताला की इस बात से बंदा दूर ना करे अपने आप को कि मेरी पकड़ नहीं आ सकती। किसी के साथ भी तो हो सकता है, आपके मेरे साथ नहीं हो सकता। आप देखिए कितने लोग हमारे बीच में सेहतमंद थे, आज बीमार होकर बिस्तरों पर पड़े हुए हैं। हमसे ज़्यादा भागते दौड़ते थे, आज अल्लाह ने उनको बिस्तर पर डाल दिया। तो हमेशा अल्लाह की सिफत को अल्लाह ही में ढूंढिए कि अल्लाह ताला मेरे पूरे जिस्म पर इख्तियार आपका है। भागते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह एक हुक्म दे हमारी कमर को कभी मुड़े ही ना, हमारे कदम एक कदम ना उठ सके। आप कभी बैठे रहें थोड़ी देर और आपका पाँव जिसको हम कहते हैं अपनी जुबान में सो गया, पाँव ऐसे नहीं लगता मन का हो गया, बल्कि उस वक्त जान निकल रही होती है कि अगर पाँव को हिलाया तो पता नहीं वो जैसे कड़ाल से नहीं पड़ जाते। कभी बैठे बैठे एकदम टांग में वो जो अंदर मसल्स खींचते हैं या मसल पे मसल चढ़े। किसके इख्तियार में है मेरा और आपका ये सब कुछ? अल्लाह के इख्तियार में। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला इंसानों को ज़मीन पर खिलाफत अता करके अता करदा इख्तियारात और वसाइल में आज़माता है। आयत 165, हुवा अल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्दी बरफ़ा बादकुम फ़ौक़बादिन दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम। ये भी एक अजीब बात है, अल्लाह कहते हैं तुमको आजमाए उस चीज़ में जो तुमको दी है। हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि आजमाइश उस पर हो रही है जो मिला हुआ है। हम कहते हैं जो चली गई चीज़ उसकी आजमाइश है, जबकि फरमाया वो वही ज़ात है जिसने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया और बुलंद किए तुम में से बास के दर्जे बास पर, ताकि आजमाए तुमको उसमें जो तुमको दिया था। ठीक है, तो हमेशा बंदा डर के रहे, कांप के रहे, जब इंसान इस ज़मीन पे चले फिरे, गुनाह करे, नाफरमानियां करे, तो एक लम्हे के लिए खुद से पूछ ले कि मैं कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता हूँ, कितनी मेरी पकड़ है। वो कहते हैं ना, उतना गुनाह करो जितनी सज़ा भुगत सकते हो। आज तो हम मस्ती के नाम पर और अपनी शोखियों के नाम पर, अपने चाओं के नाम पर गुनाह करते हैं, और सच बताऊं कि फिर कुछ भी नहीं हमें होता और हम खैर से वापस आ जाते हैं ना। ये भी अल्लाह ताला का इख्तियार है। अल्लाह की जगह हम में से कोई ऐसा होता तो अपना इख्तियार कब का इस्तेमाल कर चुका होता? अपने बच्चों पे इख्तियार है अगर आपको, तो आप अपना इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? बहुत कम लोग हैं जो उसको बर्दाश्त करके रखें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला की एक और सुन्नत क्या है, अल्लाह ताला ज़मीन पर तमकीन अता करके, तमकीन क्या होता है, मकान से, जगह, इख्तियार, नेमतों से नवाजता है, फिर नाशुक्री पर इन्हें हलाक करके दूसरी कौमों को मैदान इम्तिहान में ले आता है। आयत 6 में आता है, अलम यरव कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्न मक्कन्नाहुम फिल अर्दी मा लम नमक्किल लकुम व अरसलना समा अलैहिम मिद्रारा व जअलनल अनहार तजरी मिन तहतिहिम फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अनशअना मिन बादिहिम क़र्नन आखरीन। क्या उन्होंने नहीं देखा कितनों ही को हमने हलाक कर दिया जो उनसे पहले थे करनों के, हमने उनको जगह दी थी ज़मीन में जो नहीं दी हमने तुमको, यानी उनको जो कुछ दिया था तुम्हें तो वो दिए ही नहीं, और हमने उन पर आसमान से बरसता हुआ बादल भेजा, और हमने बनाई नहरें जिनके नीचे नहरें बहती थी, लेकिन हुआ के एंड पे फहलक ना हम, फिर हमने हलाक कर दिया उनको भी जुनू भी हम उनके गुनाहों के साथ, वह अनशा ना मिम्बादिम करन आखरीन और उनके बाद दूसरे करनों को भी हलाक कर दिया। आज तो हम बड़ी रौनों से कहते हैं ना, वो मारे गए, ख़त्म हो गए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और मिस्री मारे गए और फलां कौम पे अजाब आ गया। क्या मैं और आप अल्लाह के अजाबों से अगर आज जो बचे हुए हैं तो ये हमारी खूबी है, एक सेकंड में अल्लाह पकड़ सकते हैं, और यकीन करें एक फ़ोन कॉल हमारी ज़िंदगी का नक्शा बदल देती है। आपको बताया था कि एक औरत के 3 बच्चे और शौहर एक हादसे में इकट्ठे मारे गए ना, और अब औरत अकेली तन तन है, छोटा भी गया, छोटी भी गई, बच्चा भी गया, मियाँ भी गया, अकेली फारिग। अब आज जिन घरों जिन जिम्मेदारियों का नाम ले लेके हम नमाजें छोड़ते, हम अल्लाह को नाराज़ करते, अल्लाह ना करे इनमें से सब अल्लाह ले ले, अब क्या बजाओ, करो मज़े, फिर क्या बनेगा। तो हमेशा अल्लाह ताला के साथ मामला दुरुस्त रखना चाहिए। फिर सातवां देखिए, सूरत अनाम में तौहीद हाकमियत और तौहीद तशरी की वजाहत। तौहीद हाकमियत और तौहीद तशरी के सिलसिले में कहा गया, अल्लाह ताला के पास ही अहकाम जारी करने के इख्तियारात हैं, वो हाकिम और शारे यानी लॉ गिवर भी है। हकम तो सिर्फ अल्लाह ताला है, वो सही हुक्म देता है और बेहतरीन फैसले करता है। आयत 57, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यकुस्सुल हक व हुवा खैरुल फासिलीन। नहीं है हुक्म मगर सिर्फ अल्लाह का, वो बयान करता है हक को और वो बेहतरीन है फैसले करने वाला। फिर इसी तरह आयत 62 में आता है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही बरहक मौला है, इसी का हुक्म चलेगा और वो हिसाब करने में सबसे ज़्यादा तेज़ है। मौला हुमुल हक की अला लहुल हुक्मु व हुवा असरुल हासिबीन। सच सोचिए तो वाकई है ना अल्लाह असरुल हासिबीन, कितनी जल्दी हिसाब ले लेता है बंदे से। फिर इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी और को हकम नहीं बनाया जा सकता, जबकि इसने मुसलमानों पर मुफस्सल अहकाम नाजिल कर दिए हैं। आयत 114, अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तगी हकमं व हुवल्लज़ी अनज़ला इलैकुमुल किताबा मुफस्सला। क्या फिर अल्लाह को छोड़कर मैं तलाश करूँ कोई हकम, हालांकि वो जिसने नाजिल की तुम पर किताब तफसील से या तफसील वाली। यानी इतना क्लियर दीन है मेरे आपके पास कि हमें किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ही हलाल और हराम के इख्तियारात रखता है। अल्लाह ताला का नाम लेकर ज़िबह किए गए जानवर ही खाए जा सकते हैं, ये बात भी उस दौर के ऊपर बड़ी फिट आती थी। आयत 118, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बि आयातिही मुमिनीन। बस खाओ उसमें से जो नाम लिया गया अल्लाह का उस पर, इन कुंतुम अगर हो तुम उसकी निशानियों या उसकी आयतों पर ईमान रखते। क्या पता चला कि जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर ही खाया जा सकता है, अदरवाइज वो जानवर हलाल नहीं है। क्योंकि अगली बात, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया जाए इसे खाने से रोक दिया गया और इसे फिस्क यानी नाफरमानी का नाम दिया गया। वला ताकुलु मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क। आयत 121। अब देखिए कि सूरत अलनाम जब आप डिटेल से पढ़ते हैं तो आपको बार बार महसूस होता है खाने पीने की इन चीज़ों का बहुत तस्कर है। उस दौर में उन लोगों ने यह शोशा छोड़ा था कि जो अल्लाह ने मारा उसको तुम खाते नहीं हो यानी मुर्दार, और ख़ुद मारो तो खा लेते हो। आज के दौर का एक अजीब शोश है, मैंने इस दफ़ा पहली दफ़ा सुना है। देखिए कुर्बानियाँ कब से होती आई, जब से हम पैदा हुए हमने अपने घरों में देखा, कभी किसी को कुर्बानी के जानवर पर रहम आया था, हाय बेचारा। कभी किसी बच्चे ने हमें से ये कहा था, हाय आपने इसको मार दिया है, इसके ऊपर छुरी चला दी है तो मैंने गोश्त नहीं खाना। अब ये पिछले चंद सालों से ये मोटी मोटी आवाज़ें शुरू हो रही हैं, कुछ माओ ने मेरे साथ पिछले सालों में भी शेयर किया कि मेरा बच्चा जो है वो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता, कहता है आप जानवर को क्यों मारते हैं, कि जी है तो आप क्वेश्चन ये है कि कुर्बानी पे जानवर को मारते हैं। मेरे हस्बैंड उसी में जब बता रहे थे कि इस साल जब ये कुर्बानी हुई है तो आपके इस ग्रोनलैंड में एक पूरा उन्होंने मुजाहरा किया है, हाथों में झंडे पकड़े हुए हैं, उसके ऊपर मुर्गी है बनी हुई और उसका लिखा हुआ नीचे मैंने अभी जिंदा रहना है, और बकरी है तो उसके ऊपर है, यानी जानवर बना के हाथों में उठाए हुए हैं मैप, और प्रोटेस्ट किया है गोरों ने और दूसरों ने मिलकर कि ये कुर्बानी करना ये जानवरों के ऊपर जुल्म है। तो मेरा एक क्वेश्चन ऐसे सब लोगों से कि ये जो आपके स्टोर्स भरे पड़े हैं गोश्त से और जो आपके हलाल ज़बीहा या दूसरे, ये जानवर नहीं मरते, ये सिर्फ वो चंद जानवर जो मुसलमान कुर्बानी के नाम पे ज़िबा करता है उन्हीं को इन जिंदा रहने का हक है। दूसरी बात, मकसद क्या है जानवरों का? आप कुर्सियों पे बैठे हैं, आपका माशाल्लाह अच्छा खासा वेट है, तो क्या आप कल कहने शुरू हो जाएं कि मैं कुर्सी पे नहीं बैठती, मुझे कुर्सी पे रहम आता है? तो भी कुर्सी बनी इसलिए, ये देख लीजिए कि मजबूत है, आपका वजन सहार सकती है, आप किसी बच्चे वाले कुर्सी के ऊपर तो नहीं बैठ रहे, सीधी सी बात है। इन जानवरों की तो पैदाइश का मकसद ही है कि ये आप उनको सर्व करें, और आप जानवर को ज़िबा ना करें तो ये बूढ़े होते जाएं इनकी ज़िंदगी इन पे जीरन हो जाएगी। याद रखिए इस वक्त इस्लाम के इन बेसिक्स के ऊपर हमले आज के दौर का पसंदीदा शुगर, और हमारे मुसलमान इसके अंदर आगे शरीक हुए हैं। आज तक हमें इन गैर मुल्कों में कुर्बानियों का जो ख्याल ही ना आया, ये इसकी भी सज़ा है। मैं कहती हूँ रिएक्शन में अगर हम सब मुसलमान अगले साल जिन मुल्कों में रहते हैं वहीं कुर्बानियाँ करें और इनको दिखाएं कि अगर आज अगर मिसाल है 5-10 हज़ार बकरे कट भी गए हैं तो आपके इस मुल्क में रोज़ हज़ारों इससे भी ज़्यादा कटते होंगे। लेकिन ये कम कब होता है? जब हम मुसलमान खुद अपने दीन पे शर्मसार होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। हम जब इसको कबूल नहीं करते तो क्या होगा? वही बात होगी ना। मैंने एक बच्ची को यहाँ रहती हुई को पूछा, आपका क्या ख्याल है निकाब करना चाहिए? तो सोच के कहती, हाँ जब तक नॉर्वे में पाबंदी नहीं लगती तब तक करना चाहिए। तो मैंने कहा पाबंदी तब लगेगी जब हम नहीं कर रहे, आप करना शुरू हो जाए। एक करेगा तो उनको बड़ा अजीब लगेगा, दो करेंगे थोड़ा और, जब 100 लोग कर रहे हैं उनके लिए भला से, लोग यहाँ फटी हुई पेंटे पहन के फिर रहे हैं, कपड़े फटे हुए, किसी को अब अजीब लगता है क्योंकि सबको पता है कि ये फैशन आ गया, और जब पहली दफ़ा आपकी नज़र पड़ी होगी तो हो सकता है आपको तरस आया होगा कि इसके कपड़े फटे हुए। जब हम अपने दीन पे अमल नहीं करते तो लोगों को अजीब लगता है, वो लोग अजीब लगते हैं जो करते हैं, वो बेवकूफ़ बन के उठ जाते हैं दूसरे अकलमंद बने हुए। तो हमेशा अपने लिए इस चीज़ को गोल बनाएं कि जहाँ अल्लाह की बात आ जाए वहाँ मैंने स्टैंड लेना है। ठीक है, उस दौर का वो शिर्क था, आज के दौर के ये शिर्क है। फिर इसी तरह से आप देखिए एक और शिर्क की किस्म, ज़रई पैदावार पर ज़कात अदा करके इस पैदावार को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई लेकिन इसराफ से रोक दिया गया। आयत 141, कुलू मिन समरी ही इज़ा अस्मरा वातु हक कहू यौम हसाद ही वला तुसरिफू, खाओ फलों में से जबकि फल आए, यानी एक दफ़ा देना होता है जब फल आता है, और उसका हक दे दो काटने के दिन उस पर, और इसराफ ना करो। इसराफ क्या होता था मुशरिकीन मक्का के लिए? वो दिन आज भी बाज मेले लगते हैं फसल की कटाई के दिन पे, और जैसे ये बहार का मेला और फला, तो उस दिन इसराफ करते थे बहुत कुछ, अल्लाह ने उसे रोक दिया। इससे क्या पता चला कि खुशी का मौका है, आपको पूरे साल की फसल मिल गई, लेकिन अब उस नाम पे इसराफ तो नहीं करना कि मतलब आप गलत काम करें या अपने बुतों के नाम पे देने लग जाते थे, ये भी एक इसराफ की सूरत होती थी। फिर इसी तरह हलाल और हराम के कवायद बताए गए कि अल्लाह की वही में सिर्फ मुर्दार, बहता खून, सुअर के गोश्त और गैर अल्लाह के नाम के ज़बीहे को हराम किया गया। देखिए आप 1, 2, 3 लिख लें, आपकी रिवीजन है, सिर्फ 4 चीज़ें मिल्लत इस्लामिया में हराम है। नंबर एक, आप आयत में से ही नोट कीजिएगा, आयत 145, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَامٍ يَطْعَمُهُ, इधर ब्रैकेट लगा ले, कह दीजिए मैं नहीं पाता उसमें जो मेरी तरफ वही किया गया हराम किसी खाने वाले पे के उसको खाए। ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो शरीयत उतरी है या वही जो आई है उसमें किसी खाने वाले पे कोई चीज़ हराम नहीं, सिवाय किन चीज़ों के? इल्ला, नंबर एक, कहीं यकूना मईतत, मुर्दार, खुद से मरा हुआ जानवर। नंबर दो, अउदमम मसफूहा, खून बहता हुआ, आम खून नहीं, गोश्त के अंदर तो खून निकलता है, कीमा लेकर आए बाद में फिर गोश्त में से खून निकल रहा होता है, वो नहीं, दमम मसफूहा जो बहता है। ठीक ठीक है, और लहम खिंजीर या खिंजीर का गोश्त, फ़इन्नहु रिज्सुन जरिज्स, औ फिस्कन जफिस्क, और फिर आगे उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही, ये है चौथी चीज़, गैर अल्लाह के नाम पर जो ज़िबा कर दिया जाए ये सब फिस्क है। ठीक है, हलाल और हराम के मामले में मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह की शरीयत से बेनियाज होकर अपनी शरीयत बना ली थी। वो कहते थे कि ये मखसूस मवेशी हैं और ये मखसूस खेत हैं जो बुतों के लिए वक्फ़ हैं। हाजी या नामू व हसन हिर रियायत 138 है, ये जानवर और ये खेत गैर अल्लाह के लिए महफूज हैं। यानी कहते थे ये तुम खा सकते हो लेकिन ये नहीं खा सकते, हिजर के ममनू के मानों में, यानी इनको नहीं खा सकते। इस तरह वो समझते थे कि अगर हामिला जानवर के पेट में कोई बच्चा हो तो वो सिर्फ मर्दों के लिए हलाल है और औरतों के लिए हराम है। खालिसतुल लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना आयत 139, खालिस है यानी हलाल है हमारे मर्दों के लिए और हराम है हमारी बीवियों के लिए। आज हमारे कल्चर में क्या है, रजब के कुंडे, फलां न्याज, ये मर्द नहीं खा सकते, ये औरतें खा सकती हैं, ये बेवा नहीं खा सकती, ये प्रेग्नेंट औरत नहीं खा सकती। आज भी इस तरह की उल्टी सीधी रस्में मौजूद हैं अनपढ़ लोगों में, और वो इस तरह के काम करते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे सबको, हिदायत भी दे। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का के ख्वाहिशात नफ्स पर मबनी खुद साख्ता कवायद हलाल व हराम की गवाही देने से मना कर दिया गया। 150, अल्लज़ीन यशहदून अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा फ़इन शहीदू फला तशहद माहुम वला तत्तबी अख्वा, वो लोग जो गवाही देते हैं ये कि अल्लाह ने हराम किया है ये, बस अगर वो गवाही दें तो तुम ना गवाही दो उनके साथ और ना उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करो। यानी राह जाते हलाल को हराम और हराम को हलाल नहीं करना। अल्लाह ताला ने शिर्क को, वालदैन की नाफरमानी को, औलाद के कत्ल को, ज़ाहिर व बातन की फहाशी को और नाहक कत्ल को हराम किया। आयत 151, हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकु बिही शैयम व बिल वालिदैनि एहसाना वला तक्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक्रबुल फवाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन वला तक्तुलू नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक, हराम किया तुम्हारे रब ने तुम पर ये के क्या, या फिर 1, 2, 3 से आप लिख सकते हैं इस्लाम की क्या हराम चीज़ें हैं। नंबर एक, तुम शिर्क करो उसके साथ, वालदैन के साथ एहसान करो मतलब वालदैन की नाफरमानी नहीं करनी, और अपनी औलाद को मुफलसी के डर से हलाक ना करो। हम तुमको भी रिस्क देते हैं और उनको भी देते हैं, और ना फवाहिश के करीब आओ चाहे वो ज़ाहरी हो चाहे छुपे हुए, और ना तुम कत्ल करो नफ्स को जिसको अल्लाह ने हराम किया मगर हक के साथ, यानी कत्ल नहीं करना। अब आप देखिए कितनी वाज़ह शरीयत है हमारी, इसके बावजूद लोग गलत काम करें तो ये उनकी नासमझी है। फिर इसी तरह सूरत अलनाम में तौहीद रहमा, आप कम से कम एक काम तो कर लें ना, ये जितनी तौहीद की किस्में इनके नाम अलग लिखें और याद करें, आपको समझ आ गई है ना, अलग से तौहीद इख्तियार क्या है, तौहीद तंजीह क्या है, और अब क्या है तौहीद रहमा। तौहीद रहमत के सिलसिले में कई आयात हैं, यानी आप कह लें कि इसमें अल्लाह ताला की रहमत का बड़ा जिक्र है। जैसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन सब लोगों को जमा करेगा और अपनी रहमत का मुजाहरा करेगा जिसे इसने अपनी ज़ात पर लाजिम कर लिया है। आयत 12, कतब अला नफ्स ही रहमा लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैबा फीही, उसने अपने नफ्स पर रहमत लिख ली है, अलबत्ता वो ज़रूर तुमको जमा करेगा क़ियामत के दिन जिसके आने में कोई शक नहीं है। फिर इसी तरह आयत 16, अल्लाह ताला की रहमत का मतलब ये है कि रोज़े क़ियामत इंसान को अज़ाब से बचा लिया जाए, इसी का नाम कामयाबी है। मैं युसरा फ़न हूँ यौमिन फ़क़द रहमहू वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, कितनी ज़्यादा रहमत है मालिक की। आप देखिए कि अल्लाह की इतनी रहमत के बावजूद फिर कौन आग में जाएगा, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था याद है, अब तो वही जाएगा जहन्नम में जिसने सोच लिया कि मैंने जहन्नम में जाना है। यानी अकाइयों और दहाइयों का तसलसल था, नेकी एक करें तो 10 लिखी जाए, गुनाह एक करें तो 1 लिखा जाए, इतनी रहमत हो इतनी लूज़ मार्किंग हो, इसके बाद भी कौन फेल होगा भला, जिसने सोच लिया कि मैंने तो फेल होना है। अदरवाइज़ अल्लाह ताला का इरादा, अल्लाह ताला का फ़ैसला क्या है कि मैंने दूसरों को जहन्नम में जाने से बचाना है। आपका मेरा अपनी ज़िंदगी में ये मामला अपने साथ है, अल्लाह ताला ने सारी मखलूक क्यों इस असूल पे रखना है। हम उस पर रहमत करते हैं जिस पर मेरा दिल करता है, जिससे प्यार होता है, जो अच्छा लगता है, उसके साथ रहम वाले हैं, उसकी गलतियों को भी इग्नोर करते हैं, ओवरलुक करते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला का मामला पूरी इंसानियत के साथ ये है कि वो सब पे रहम करना चाहता है। सच्ची बात है कि हमें गुस्सा आने लगता है लोगों की गलत चीज़ें देख के, अल्लाह को भी आता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हक़ में क्या लिखा है, कतबा अला नफ्सिहिर रहमा। इसी तरह आयत 16, मैं युसरफ अनहु यौमैज़िन फ़क़द रहमहु व ज़ालिकल फौज़ुल मुबीन, जो उस दिन बचा ली गया उस अज़ाब से, बस उस पर रहम हुआ और यही है कामयाबी वाज़े। तो क्या पता चला कि अल्लाह की रहमत का मतलब यह है कि रोज़े क़्यामत इंसान को अज़ाब से बचा लिया जाए, और इसी का नाम कामयाबी है। ज़रा सोचिए, क्या हमने अपने बच्चों की इस कामयाबी का एतबार कर लिया, यकीन कर लिया, इसका इंतज़ाम कर लिया? हम दुनिया की कामयाबियों के लिए तो गर्मी सर्दी के फ़िक्रमंद है, उनकी तैयारियां, उनके स्कूल जाने, उनके कपड़े, उनके यूनिफॉर्म, एक बच्चे का छोटा सा खेलना, गेम्स हमारे लिए इतना बड़ा इशू बन जाते हैं, उसका मैच है, उसकी स्विमिंग है। अब तो ये छोटे छोटे काम इतने बड़े बड़े बन गए कि लोग अपनी क्लासों से उठ उठ के जाते हैं, नहीं जी बच्चे को स्विमिंग पे छोड़ने जाना है। क्या हमने अपने बच्चों की इस हकीकी कामयाबी का फैसला कर लिया? असल ये सवाल है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने रहमत को अपनी ज़ात पर लाजिम कर लिया। जो लोग लाइल्मी की वजह से गलत काम कर बैठें और फिर अपनी इसलाह कर लें, तो अल्लाह ताला मग़फ़रत और रहम फरमाएगा। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा अन्नहु मन अमिला मिनकुम सुअम बिजहालतिन सुम्म ताबा मिन बादिही वस्लहा फइन्नहु गफूरुर रहीम। आयत 54 है। उसने अपने नफ्स पर रहमत लिख लिया है, बेशक जो कोई तुम में से बुरे काम करे जहालत यानी नादानी से, नासमझी से, फिर तौबा कर ले इसके बाद और इसलाह कर ले, तो वो बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला वसी रहमत वाला है, लेकिन रोज़े क़्यामत अदल इंसाफ़ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, मुजरमों से अजाब को नहीं टाला जाएगा। आयत 147, रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासियतिन वला युरद्दु बासुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन। फिर इस तरह इसकी रहमत का एक सबूत ये भी है कि वो नेकियों का अजर 10 गुना ज़्यादा देता है, लेकिन बुराई का सिला बुराई के बराबर ही देता है। मन जाबिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाबिस सैयति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा। आयत 160। जो भलाई लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना है, और जो बुराई लेकर आएगा उसकी जजा उसी जैसी है। फिर इंसान को साफ बताया गया कि अल्लाह ताला ने इसे ज़मीन में खलीफा बनाया, बास को बास पर फजीलत दी गई, ताकि मा आताकुम, जो कुछ वसाइल अता किए गए सिर्फ इन्हीं में इंसान को आजमाया जाए। आजमाइश में फेल होने वालों के लिए वो सरीउल इक़ाब है, और पास होने वालों के लिए गफूर रहीम है। कहाँ लिखी है ये बात? आयत 165, वहुअल्लज़ी जालकुम खलाइफल अर्दी व रफ़ा बादकुम फ़ौक़ बादिद दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्ना रब्बक सरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूर रहीम। वो वही है जिसने तुमको खलीफा बनाया ज़मीन में और बुलंद किए तुम में से बास के दरजात बास पे, ताकि तुमको आजमाए जो तुमको दिया उसमें। बेशक तेरा रब इस जल्द अजाब देने वाला और वो बख्शने वाला भी है। यानी अल्लाह सुबहाना तआला की सारी खूबियाँ जो हैं वो एक्सट्रीम के दर्जे पे हैं। पूरे यकीन के साथ इस चीज़ को लेने की ज़रूरत है। क्या ये सारा कुछ पढ़ते हुए लग नहीं रहा कि अल्लाह की रहमत कितनी ज़्यादा है? हम छोटी छोटी बातों पर अल्लाह ताला से नाराज़ होने लगते हैं। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।